नमस्कार भारत, तारीख 13 अगस्त, दिन मंगलवार। मैं हूँ मानसी दाश। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद की पहली ईद कैसी रही? अब यहाँ कैसे हैं हालात?
रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी पूरा एक कम्युनिकेशन गैप है, एक बहुत बड़ा, और वहाँ से हमें कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं मिल रही है। मैं एक खामोशी सुन रही हूँ, बिल्कुल खामोशी। इस किस्म का सन्नाटा कभी सुनने को नहीं मिला।
चीन पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री, भारत पाक तनाव के बीच कितनी अहम उनकी यात्रा?
ये कोई पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरह से डैशिंग वाली यात्रा नहीं है कि क्राइसिस मैनेजमेंट वाली कोई यात्रा हो। तो ये पहले से यात्रा तय थी और इसका जो एजेंडा है, जो मुद्दे यहाँ आपसी बातचीत में हुए हैं।
सुनवाएंगे रिपोर्ट दिल्ली की खास महिला टूरिस्ट गाइड्स पर, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने दावा किया है कि घाटी में ईद शांति के माहौल में मनाई गई। पुलिस के मुताबिक कानून व्यवस्था के एक दो मामलों को छोड़कर घाटी में स्थिति सामान्य रही। श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि ईद पर भी आवाजाही पर पाबंदियां जारी रहीं, कुछ बड़ी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी गई और ड्रोन और हेलीकॉप्टरों की मदद से निगरानी रखी गई। कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों के लिए वीज़ा अवधि बढ़ाने और स्थायी नागरिकता यानी ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और मुश्किल बनाने जा रहा है। इस बदलाव से सरकारी सुविधाओं पर एक साल से ज़्यादा समय तक आश्रित रहने वाले अप्रवासी प्रभावित होंगे। अक्टूबर से अमल में आने वाली इस नई व्यवस्था से कम आमदनी वाले अप्रवासियों को स्थायी निवास और नागरिकता मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इससे भारतीय प्रवासियों की भी एक आबादी प्रभावित हो सकती है। न्यूयॉर्क इमिग्रेशन कोलिशन के कार्यकारी निदेशक स्टीव चोय ने कहा कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे।
This is not a bug. This is a feature. It's a very intentional effort by the Trump administration.
ये बग नहीं, ये एक फीचर है। ये ट्रंप प्रशासन का अप्रवासी समुदाय को क्रूरता और डर के जरिए निशाना बनाने का सोचा समझा प्रयास है। हम अपने सहयोगियों के साथ इसके खिलाफ लड़ना जारी रखेंगे। ये थे स्टीव चोय के शब्द। हांगकांग हवाई अड्डे पर जमा सैकड़ों लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी अब वापस लौट गए हैं। उड्डयन प्रशासन का कहना है कि वे आने वाले कुछ घंटों में उड़ानें फिर से शुरू करने की कोशिशें कर रहे हैं। सोमवार को यहां से सारे यात्री उड़ानें रद्द कर दी गई थीं। बीते सप्ताहांत में पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के आरोप लगे थे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में हवाई अड्डे पर पहुंचकर कामकाज ठप कर दिया था। इन प्रदर्शनों के बड़े चेहरों में से एक डेनिस हो ने बीबीसी से कहा,
There is a goal to these movements, whether it is to protest
against इन प्रदर्शनों का एक मकसद है, चाहे वो किसी प्रशासन के खिलाफ हो या सरकारी सिस्टम को ठप करना हो। तो मुझे लगता है कि आज का मकसद पूरा हुआ, इसलिए लोग घर जा रहे हैं और वे कल फिर आएंगे। ये थे प्रदर्शनकारियों में से एक डेनिस हो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अर्जेंटीना में एक मध्यमार्गी वामपंथी नेता के राष्ट्रपति चुनावों के शुरुआती चरण में जीतने के बाद वहां शेयर बाजार में काफ़ी गिरावट आई है। बाजार के पक्षधर माने जाने वाले राष्ट्रपति मॉरिको मैक्री की हार और अल्बर्टो फर्नांडीज की जीत के बाद मुख्य शेयर बाजार लगभग 40% की गिरावट पर बंद हुआ और देश की मुद्रा पेसो का मूल्य भी 15% घट गया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि इस गिरावट से पता लगता है कि बाजार को विपक्ष पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अक्टूबर में यहां राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ब्राजील में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे एडवर्डो की अमरीका के राजदूत के तौर पर नियुक्ति पर विवाद हो गया है। देश के सरकारी अभियोजकों के दफ्तर ने संघीय अदालत में अपील करके इस नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है। अभियोजकों का कहना है कि उनके पास जरूरी अंतर्राष्ट्रीय अनुभव नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि अक्टूबर में ब्रिटेन के बिना समझौते के यूरोपीय संघ से अलग हो जाने का अमेरिका जोर शोर से समर्थन करेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत के बाद बोल्टन ने कहा कि ब्रेक्सिट के बाद दोनों देश एक व्यापक समझौते के बजाय क्षेत्र दर क्षेत्र व्यापार समझौते कर सकते हैं। नाइजीरिया में इस्लामी आंदोलन के नेता शेख इब्राहिम अल जाकजगी इलाज के लिए अपनी पत्नी के साथ भारत आ रहे हैं। एक स्थानीय हाईकोर्ट ने पति पत्नी को इलाज के लिए भारत आने की इजाज़त दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि उन्हें नाइजीरिया वापस जाना होगा, जहां उन पर गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और अवैध सभाओं के मामले चल रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कल पूरे भारत में बकरीद का त्यौहार मनाया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए कल का दिन खास था। सप्ताह भर पहले यानी 6 अगस्त को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पारित हुआ था। इसके बाद यहां कल पहली ईद थी। यहां पाबंदियों और कड़ी निगरानी के बीच ईद मनाई गई। श्रीनगर की ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज नहीं पढ़ी गई। प्रशासन की ओर से लोगों को अपने मोहल्लों की मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने के लिए कहा गया था। इस बीच नौरा इलाके में कुछ लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की खबरें आई हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि कुछ जगहों पर कानून व्यवस्था के लिए थोड़ी असहज स्थिति जरूर हुई थी, लेकिन उस पर जल्द काबू पा लिया गया। प्रशासन ने कश्मीर घाटी में बल प्रयोग की खबरों का भी खंडन किया है। बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने जम्मू में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन से संपर्क साधा और उनसे यही पूछा कि जम्मू में हालात कैसे हैं और क्या राज्य के दूसरे हिस्से यानी कश्मीर के बारे में जम्मू कश्मीर के बारे में और कुछ जानकारियां अब मिल पा रही हैं।
देखिए, हमारे लिए तो यहाँ पे जहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं एक पूरा इंफॉर्मेशन ब्लॉकेट है। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका हमारे साथ कोई रابطہ नहीं है, चाहे वो श्रीनगर में के ब्यूरो ऑफिस में हो या बाकी डिस्ट्रिक्ट में हो वादी की या रजौरी पुंछ डोडा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी एक कम्युनिकेशन गैप है एक बहुत बड़ा, और वहां से हमें कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट्स नहीं मिल रही हैं। हमें जो सुनने को मिल रहा है कुछ न्यूज रिपोर्ट्स जो दिल्ली के अखबारों में आई हैं या जो कुछ फॉरेन मीडिया में आई हैं, इसके अलावा जो है वो सरकारी वर्जन है। अब अगर इतना ही सही माहौल है तो फिर इनको तो फोन लाइन जो है वो शुरू करनी चाहिए थी, तो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये किस हद तक सही है, लोग वहाँ गए हैं कि नहीं गए हैं। जो एक स्थिति बनी हुई है एक सीज की स्टेट के आधे से ज्यादा हिस्से में, तो वहाँ एक मीडिया को भी गैग किया जा रहा है ताकि मीडिया उन इंफॉर्मेशन सच क्या है सच्चाई क्या है वो जान ना सके और उसको दिखा ना सके।
जम्मू शहर की अगर बात करें वहाँ पे किस तरह की स्थिति है और लोग किस तरह से देख रहे हैं चीजों को?
देखिए, जम्मू में आज जो एक ईद का जो वो फेस्टिविटी होती है जिसके किस्म की वो नहीं था, एक सोम्बर अफेयर था। शायद इसलिए कि बाकी स्टेट में एक तनाव बना हुआ है उस वजह से था कि क्या कहना मुश्किल है, लेकिन अदरवाइज जम्मू में काफी हद तक एक नॉर्मल रूटीन में आ रहा है जम्मू, लेकिन हमारे अभी इंटरनेट पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुआ है। दूसरा, अगर कोई भी डाइसेंटिंग वॉइसेस है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है या उनको चुप कराया जा रहा है, जैसे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हाउस अरेस्ट में है। कांग्रेस का कल परसों एक मुजाहरा हुआ था उनके दफ्तर के बाहर ही, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन निकाला तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इस किस्म की जो चीजें हैं वो 100% नॉर्मलसी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी स्टेट के हिस्सों से मेरे ख्याल से जम्मू के हालात या सांबा के कठुआ के उधमपुर के भी काफी हिस्से जो उधमपुर के हैं वहाँ भी एक तकरीबन नॉर्मल रूटीन आ रहा है।
तो सरकार की ओर से दावा किया गया था कि घाटी में जो अखबार छपते हैं वहाँ से उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, और जो कह रहे हैं कि मीडिया पे पाबंदियां लगाई गई हैं वो गलत है।
देखिए, हमारा सबसे पुराना अखबार है, हमारी दो एडिशंस हैं, मैं एक खामोशी सुन रही हूँ, बिल्कुल खामोशी। ये इस किस्म का हमने पहले भी, क्योंकि एक वादी में और बाकी जितने ये हिल डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं यहाँ पे हमेशा से कोई ना कोई तनाव रहा है, खासतौर पे वादी में, और इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी बहुत बार हिट भी हुई है, पर इस किस्म का सन्नाटा कभी सुनने को नहीं मिला। कुछ ना कुछ ट्रिकल होता ही था कि हम यहाँ जम्मू ऑफिस में बैठ के कंपाइल करते थे और थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते थे, कुछ ऑथेंटिकेट कर सकते थे। यहाँ पे तो हमारा किसी के साथ रابطہ ही नहीं है, हमारी जो रिलायंस है यहाँ पे बैठ के वो दिल्ली की रिपोर्ट्स पे है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में क्या है हालात, बता रही थी वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन। इधर भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर मामले पर कल शाम को कहा कि भारत सरकार कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने भारत की सरकार पर नाजी विचारधारा को बढ़ाने का आरोप लगाया।
बोलने का हक तो दे, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। आप कहते हैं हमारे आईन में बुनियादी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को तो आप खुद बवाल कर रहे हैं। और यही मैं अर्ज कर रहा हूं, फैसिज्म, पीपल आर सीइंग ए एक्चुअल डेमोंस्ट्रेशन ऑफ नाज़ी फिलॉसफी बीइंग रिपीटेड बाय नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी। ये दुनिया देख रही है भैया, एंड द इंटरनेशनल वर्ल्ड एंड द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज शुड वेक अप टू दैट एंड दे शुड रेज दिस इश्यूज।
पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मोदी सरकार पर नाजी विचारधारा अपनाने का आरोप लगाया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कश्मीर मुद्दे पर विचार करने की अपील की है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह भर से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके लिए 9 अगस्त को पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन गए थे, जहां उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इसके बाद 11 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे। कल यानी सोमवार को उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति वांग चीशान से और फिर विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और रिश्ते मजबूत करने के लिए 100 कार्यक्रमों के आयोजन के फैसले की घोषणा हुई। इसी मुलाकात में चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर भी भारत को कुछ सुझाव दिए। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्री ने क्या कहा, सुनिए।
Some suggestions were also made today by the Chinese side to expand the Kailash Mansarovar Yatra, and we are deeply appreciative of those initiatives.
एस जयशंकर बता रहे हैं कि चीनी विदेश मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा का अधिक विस्तार करने के संबंध में कई सुझाव दिए हैं और इसके लिए हम चीन का धन्यवाद करते हैं। वार्ता शुरू करने से पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भारत चीन के आपसी संबंधों को स्थिर रखने पर बनी सहमति का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त ये सुनिश्चित किया गया था कि हमारे बीच किसी तरह के मतभेद को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। हाल में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति के मद्देनजर उनके बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मामले पर चीन ने लद्दाख से सटी सीमा को लेकर कड़ा बयान दिया था, लेकिन पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा के मामले में भारत और पाकिस्तान दोनों को संयम बरतने के लिए कहा था। ऐसे में इस पूरे मामले पर चीन के रुख को कैसे समझा जाए? बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने यही सवाल किया चीन मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से।
चीन पाकिस्तान का सबसे खास दोस्त है। चीन लद्दाख में शाक्सगाम वैली उसके पास है, जो पाकिस्तान ने 1963 में अपनी सीमा को सुलझाते हुए जो संधि की थी उसमें दे दी थी। तो इन दो कारणों से चीन का जो रुख है वो हल्का सा आक्रामक जरूर है। पर आप यदि सोचें कि 1998 में जब भारत ने परमाणु शस्त्रों का जो टेस्टिंग किया था, तब भी बहुत से देशों का रुख शुरू में बहुत ही इस तरह से आक्रामक था। और भारत की जो राजनीति है, जो हमारी डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, उसके चलते बहुत ही संयम और समझ के साथ हमने तब भी देखिए धीरे धीरे सबका जो समझ है उस बात को लेकर उसमें परिवर्तन लाने में हम सफल रहे थे भारत में। तो इस बार भी लगता है कि ये बड़ा कदम है और कुछ राष्ट्र, खासकर पाकिस्तान और चीन जो है, वो उससे कुछ चिंतित हैं, परेशान हैं, कुछ इस तरह की टिप्पणियां वहां से आई हैं। तो भारत उनको बहुत ही संयम और समझ से फिर से अपनी कूटनीति से बात समझाने की कोशिश करेगा, और यही संयम और समझ आप देखते हैं इस यात्रा में इस मुद्दे को लेकर है। पर आप ये देखें कि ये यात्रा केवल उस मुद्दे को लेकर नहीं है, जैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा केवल इस मुद्दे को लेकर हुई हाल ही में, ये भारत के विदेश मंत्री की यात्रा चीन में जो हुई है वो बहुत ही बड़े एजेंडा को लेकर है। उसमें कई दूसरी बातों पर भी आपसी तालमेल और समझ बनी है। इसलिए मुझे लगता है कि चीन आज भारत के साथ रिश्तों को एक बड़े पैमाने से देखता है, जिसमें जम्मू कश्मीर एक मुद्दा है। उसमें अभी शायद चीन को कुछ उलझन है, उसको धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश भारत कर रहा है।
जिस तरह से, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा के बाद और उन्होंने जो मुलाकात के बाद दावे किए थे और चीन की तरफ से भी जो बयान आया था, उसके थोड़ा भारत के लिए सख्ती भरा माना जा रहा था, तो अब क्या लगता है कि उस रुख में थोड़ी सी नरमी आई है या उसी स्टैंड पे बरकरार है चाइना अभी भी? क्या कुछ इससे कोई कंक्लूजन निकाला जा सकता है?
ये देखिए, देखिए, कश्मीर पर एक बड़ा निर्णय लेने के बाद भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक डिप्लोमेटिक अप्रोच है उसमें समझ और संयम की जरूरत है और ऐसा ही नजर आ रहा है। और भारत के विदेश मंत्री बहुत पहले से ही चीन पर बहुत सुदृढ़ पकड़ रखते हैं, समझ रखते हैं और उनके परस्पर व्यक्तिगत तौर पर बड़े अच्छे संबंध हैं चीनी नेताओं के साथ। आप देखें कि चीन ने उनको जिस तरह से होस्ट किया है उससे लगता है कि चीन भी भारत के साथ रिश्तों को एक बड़े पैमाने पर देखता है जिसमें जम्मू और कश्मीर का एक मुद्दा है और जाहिर है कि उसको लेकर चीन के चिंताएं हैं। उसको भारत ने समझाने की कोशिश की होगी कि भारत की नीति क्या है और वो उसको केवल बड़ा मुद्दा न बनाकर एक ही मुद्दा बनाए रखा जाए। इसमें आप देखें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने वहां के एक बहुत ही खास उपराष्ट्रपति वांग छीशान से भी मुलाकात की। वांग यी के साथ जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ तो मुलाकात उनकी हुई ही। तो ये यात्रा एक तो बहुत पहले से तय थी, इस बात को याद रखना जरूरी होगा। ये कोई पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरह से ये डैशिंग वाली यात्रा नहीं है कि क्राइसिस मैनेजमेंट वाली कोई यात्रा हो। तो ये पहले से यात्रा तय थी और इसका जो एजेंडा है, जो मुद्दे यहाँ आपसी बातचीत में हुए हैं, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बातचीत हुई है और केवल जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं हुई है। जरूर वो एक मुद्दा था और उस पर आपस में आदान प्रदान हुआ होगा विचारों का।
भारतीय विदेश मंत्री की चीन यात्रा कितनी अहम, विश्लेषण कर रहे थे चीन मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
कार्यक्रम में अब बात दक्षिण और पश्चिम भारत के कुछ राज्यों की। बाढ़ के कारण बीते कई दिनों से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल बारिश का कहर झेल रहे हैं। यहां बाढ़ के कारण जानोमाल का काफी नुकसान हुआ है और लाखों की संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। इस दौरान कहीं से दिल दुखाने वाली खबरें आ रही हैं तो कहीं भावुक करने वाली। बाढ़ प्रभावित राज्यों में कैसे हैं हालात, सुनिए हमारे सहयोगी आदर्श राठौर की रिपोर्ट।
दक्षिण भारत के कई इलाकों में मानसून सीजन में आसमान से आफत बरस रही है। नदियां उफान पर हैं और कई बांध अपनी क्षमता को पूरा कर चुके हैं। इस बीच भावुक कर देने वाली खबरों की भी बाढ़ सी आ गई है। कर्नाटक के बेलगावी जिले की रायबाग तहसील में गांव है शिरगुर। ये गांव बाढ़ से प्रभावित है। 10 और 11 अगस्त को मराठा रेजिमेंट के सैनिकों ने यहां पर राहत अभियान चलाया था और 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया था। ऐसे में स्थानीय लोगों ने सैनिकों के प्रति आभार जताने के लिए उन्हें सोमवार को ईद का न्योता दिया था। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली टीम की अगुवाई करने वाले मेजर राजपाल सिंह राठौर ने हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी को बताया।
आज हमारा टीम जो है यहाँ इवेंचुअलिटी के लिए रुका था कि अगर सभी लोगों को कल निकाल दिया था लेकिन फिर भी अगर कुछ इवेंचुअलिटी होता है तो, और रिजर्व के लिए हमें यहाँ पे रुका गया था तो उसमें ईद भी था आज, तो उन लोगों ने इन्वाइट किया था और हम सब ने साथ में ईद मनाया और अपनी दुआ भी अदा की मस्जिद में और बहुत अच्छा लगा इसमें और बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं हमारा पूरा टीम।
कर्नाटक के कई इलाकों में स्थिति अब भी खराब है। सोमवार शाम तक कम से कम 42 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। इससे भी ज्यादा खराब हालात हैं केरल के, जहां पर सोमवार शाम तक 76 लोगों की मौत की खबर है। मल्लपुरम जिला राज्य का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित जिला है। यहां पर कवलपरा गांव में 5 दिन पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें 20 घर दब गए थे। तब से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब तक 11 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। भूस्खलन के बाद से ही यहां पर एक परिवार के 5 बच्चे लापता थे जिनमें से 2 के शव मिल गए हैं। ये दोनों बहनें थीं जिनका सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। बीबीसी संवाददाता दीप्ति बतिनी वहाँ मौजूद थी।
एक बहुत ही ऐसी कहानी है अलीना और अनगा की। दोनों बच्चे बहने हैं, कवलपरा गांव में एक चर्च में उनका लास्ट राइट्स हुआ है। यहाँ पे जो जितने भी लोग वहाँ पे गांव वाले वहाँ पे आए सभी का यही कहना था कि लाइक दोनों बच्चे उनका खाना पीना हो या बाहर जाना हो, खेलना कूदना हो, सभी साथ में ही करते थे, तो इसीलिए इन बच्चों के माँ बाप ने भी उन दोनों को एक ही साथ दफनाया है।
उधर महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि एक हफ्ते से बंद पड़ा बेहद अहम मुंबई बेंगलुरु हाईवे खुल गया है। बीबीसी संवाददाता मयूरेश कुंडूर ने बताया कि कोल्हापुर शहर पानी में डूब चुका था और उसके बाहर से होकर गुजरने वाली ये सड़क भी डूब चुकी थी।
कोल्हापुर और सांगली के दोनों जिले जो हों और दोनों शहर जो भी हैं वो अभी भी पानी में हैं। लोग फंसे हुए थे एक जगह पे, वो अब उनको निकाला गया है। करीब 4.5 लाख लोग जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं और टोटल 43 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है।
गुजरात की बात करें तो यहाँ अगस्त की शुरुआत से ही भारी बारिश हो रही है। पहले हफ्ते जहां मध्य गुजरात में बारिश का असर पड़ा, लेकिन दूसरे हफ्ते में बारिश दक्षिण गुजरात और इसके आसपास के इलाकों में हालत खराब करने लगी। बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा बताते हैं कि पिछले 2 दिनों में बारिश कम हुई है, लेकिन दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है।
पिछले 2 दिनों से गुजरात में बारिश का जोर कम हो गया है। अभी भी साउथ गुजरात के कुछ गांवों में पानी भरा है, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स जो है वो चला रही है और कोई जानहानि पिछले 2 दिनों में रिपोर्ट नहीं हुई। बारिश की वजह से और बारिश की वजह के एक्सीडेंट की वजह से करीब 31 लोगों की जान अभी तक गई है।
इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश का प्रभाव कम रहेगा, फिर भी सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह कर्नाटक और केरल के लिए भी आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। आदर्श राठौर, बीबीसी दिल्ली।
और अब वक्त है जानने का अखबारों में आज क्या छपा है। कुलदीप मिश्र हमारे साथ स्टूडियो में अखबार लेकर आ गए हैं। कुलदीप, ईद और कश्मीर की खबरें तो हर अखबार में है, क्या उसके अलावा भी कुछ है?
जी, लेकिन आज भी जो प्रमुख खबर है ज़्यादातर अखबारों में वो कश्मीर से ही जुड़ी है। पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, बकरीद पर वहाँ कैसा माहौल रहा उसे लेकर अखबारों ने अपनी रिपोर्टें छापी हैं। नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है, घाटी में अमन के साथ नमाज, एक भी गोली नहीं चली। अखबार ने लिखा है कि केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अब 15 अगस्त केंद्र के लिए अगली चुनौती होगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर दी है कि कोई बड़ा संघर्ष तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार ईद कुछ फीकी जरूर रही। दैनिक जागरण ने कहां कितने नमाजी पहुंचे उसकी एक सूची छापी है, बारामूला में 10,000, बड़गाम में 8,000 आदि। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की 2 तस्वीरों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। अगल बगल ये तस्वीरें छपी हैं। बाईं तस्वीर में श्रीनगर की एक हरी छत वाली मस्जिद गुलजार दिख रही है, बड़ी संख्या में वहाँ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। और दाईं तस्वीर में सड़कें खाली हैं और दिख रहे हैं तो सुरक्षा बलों के करीब 8-9 जवान हाथों में हथियार, शील्ड लेकर के, सिर पर हेलमेट लगा करके वो गश्त देते हुए दिख रहे हैं।
और वो कश्मीर की तस्वीर है,
कश्मीर की तस्वीर है। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि पाकिस्तान कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लेकर गया, लेकिन वहाँ अगस्त के महीने में अध्यक्षीय यूरोपीय देश पोलैंड के पास होती है और पोलैंड ने इस पर पाकिस्तान से 2 टूक कहा है कि द्विपक्षीय हल इसका निकालिए। यानी एक तरह से वही बात कही उन्होंने जो भारत कहता रहा है। तो रूस के बाद अब पोलैंड भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दूसरा देश है जिसने भारत का पक्ष लिया है
जी।
एक खबर और ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है, वो है रिलायंस जियो से जुड़ी हुई खबर। अब रिलायंस जियो मोबाइल के बाद ब्रॉडबैंड इंटरनेट के क्षेत्र में कदम रख रहा है और उसका बुनियादी पैकेज 700 रुपये प्रति महीने से लेकर से शुरू होगा और वो 10,000 रुपये प्रति महीने तक होगा। और इंटरनेट स्पीड जो वेरी करेगी वो 100 Mbps से शुरू होगी और 1 GB प्रति सेकेंड तक होगी। तो मोबाइल इंटरनेट के बाद अब ब्रॉडबैंड इंटरनेट की ओर जियो जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने ही खबर दी है कि भोपाल में एक पुलिस थाने में 4 पुलिसकर्मियों को, 4 आदिवासी लोगों को जबरदस्ती पेशाब पिलाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। एक खबर गोवा से है जहां बाहर से आकर बसे लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए वहां के स्थानीय उपनाम इस्तेमाल करने लगे हैं और इस पर प्रदेश सरकार अब उन सभी की जांच करने वाली है जिन्होंने बीते 15 दिनों में नाम बदलने का आवेदन किया है। तो इस संबंध में गोवा के कानून मंत्री ने विभाग को जांच करने के आदेश दिए हैं। एक खबर हिंदुस्तान टाइम्स में भी है, छोटी सी, बस कुछ सेकंड में मैं जिक्र करना चाहता हूं कि 15 अगस्त से वहाँ जो ट्रैफिक का जुर्माना लगेगा वो न्यूनतम जुर्माना 1,000 रुपये का होगा। हेलमेट आपने नहीं पहना है आपको 1,000 रुपये।
ये पूरे भारत में लागू होगा
जी।
जी, अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद कुलदीप मिश्र। और अब बात उन महिलाओं की जो अपनी जिंदगी में कई तरह की चुनौतियों से जूझने के बाद नई राह पकड़ चुकी हैं। किसी की जबरन शादी हुई थी तो किसी को दहेज के लिए यातनाएं सहनी पड़ी थीं। कोई नशे की गिरफ्त में थी तो किसी को मजबूरी में शेल्टर होम में रहना पड़ा था। मगर अब ये लोगों को इतिहास की सैर करवाकर अपना भविष्य बना रही हैं। दिल्ली की इन खास महिला टूरिस्ट गाइड्स के बारे में सुनिए बीबीसी संवाददाता सूर्यांशी पांडे की रिपोर्ट।
ईशा खान न्याज थे, ये ज़्यादा अमीर नहीं थे, तो इन्होंने इसलिए इस पत्थर का यूज़ किया गया है। और कहीं कहीं पे आप देखोगे कि लाल पत्थर का भी यूज़ किया गया है जिस पर काफ़ी सारा अच्छे से खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है उसको। वो पत्थर है लाल बलवा पत्थर, तो उसके ऊपर अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर ये जालीदार एक तरह से कमरा बनवाया था।
दिल्ली के हुमायूं के मकबरे की सैर करा रहे हैं, नाम है इनका तबस्सुम। तबस्सुम की ही तरह तरन्नुम और हुमा भी हैं, जो टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं। आप अगर दिल्ली आएं और लाल किला, हुमायूं के मकबरे जैसे ऐतिहासिक स्थलों की सैर करना चाहें, तो आपको मिलवाते हैं इन महिलाओं से, जो अपनी मुसीबतों से लड़ती हुई आज बन रही हैं टूरिस्ट गाइड। और क्यों खास है ये टूरिस्ट गाइड, वो तरन्नुम की बातों से आपको खुद ही पता चल जाएगा।
जब हम घर से बाहर निकलने लगे, हम लैन बसेरे में जामा मस्जिद में नशे करने लगे, हमारी मम्मी पकड़ पकड़ के हमें ले जाया करती थी, बेटा नशा नहीं करते।
दो एनजीओ के सहयोग से टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग ले रही तरन्नुम यूं तो शेल्टर होम में रहती हैं और शादी से पहले नशे की आदी हो गई थी। तरन्नुम जामा मस्जिद के पास स्थित शेल्टर होम में रहती हैं। अब शादीशुदा हैं और अपने दो बच्चों के साथ गुजर बसर करती हैं। टूरिस्ट गाइड की ये ट्रेनिंग उन्हें किस तरह से मदद दे रही है वो खुद बता रही हैं।
जरूरी नहीं है पैसा, जरूरी नहीं है, या हमारे घर में ही से कोई आ जाएगा, अरे जामा मस्जिद आ गया। जामा मस्जिद के बारे में हम जान नहीं रहे, हम दिल्ली का जामा मस्जिद और लाल किला क्या खूबी है उसके अंदर और क्या नहीं है वो हमें बताना पड़ता है, और हमें जानकारी भी मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा यह हेडटेक बॉक्स का, कि मैं और दुनिया को और लोगों को भी जानकारी दे सकती हूँ।
अब मिलिए हुमा से।
मैं 5th या 6th में थी, उस दौरान फादर बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, तो मेरी मम्मी ने शुरू से ही जैसे सिलाई कर कर ही हम लोगों को पाला। हम 5 बहन भाई हैं, 2 महीने और 3 भाई।
हुमा की मानसिक रूप से बीमार लड़के से शादी करा दी गई थी। 2 महीने बाद ही घर लौटने पर बड़ा भाई पाबंदियां लगाने लगा था।
मेरे भाईजान जो हैं सबसे बड़े घर में, तो वो बहुत बाउंडेशन लगाते थे कि ये कहाँ जा रही है, क्यों पढ़ रही है।
टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग के लिए इन सभी महिलाओं को कम से कम 7वीं तक पास होना अनिवार्य है। इन महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे गौरव शर्मा से जब हमने जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने किस तरह से इन महिलाओं को ट्रेन किया और किन किन दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा, तो उन्होंने ये कहा।
उनसे सिर्फ उनका नाम बुलवाना भी या उनका बैकग्राउंड बुलवाना भी, जो किसी भी वर्ल्ड में किसी भी प्रेजेंटेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अपने बारे में बताइए, वो उनसे बुलवाना भी बहुत मुश्किल होता था शुरू शुरू में। फिर हमने सेशंस को इस तरह से रखा था कि उनका इंटरेस्ट हम बनाए रखें, कि कभी मैप बनाना सिखा रहे हैं उनको, कभी रूट समझा रहे हैं, कभी वॉक कैसे होती है।
गौरव से ट्रेनिंग ले चुकी असिया का ये कहना है कि इस ट्रेनिंग से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
जैसे सपोज कोई डॉक्टर आता है, कोई इंजीनियर, अच्छा मैं तो इतने बड़े डॉक्टर से मिली थी, अलग अलग लोगों से, एक अपने अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, एकदम खुशी होती है अंदर से।
ये ट्रेनिंग इन्हें आत्मविश्वास तो दे रही है, पर रोजगार का क्या? तो हमने समाज सेविका ईला गुप्ता से जानने की कोशिश की कि आखिर ये महिलाएं टूरिस्ट गाइड के काम से कितना कमा लेती हैं। उन्होंने बताया कि एक टूरिस्ट से लगभग 300 से 500 रुपए ये महिलाएं कमा लेती हैं।
जब वो मतलब यहाँ पर अपने राज वो रहते थे महल में, तो इन्होंने एक जालीदार कमरा बनवाया कि हवा आती जाती रहे बाहर की साइड और अंदर की साइड, और इसी वजह से ये आप देखोगे जो अलावरी पत्थर है उसके ऊपर ज्यादा कुछ खास डिजाइन किया नहीं है, बस एक पत्ते का डिजाइन डाला गया।
अपने अतीत के साए से निकल ये दुनिया को इतिहास बता रही हैं। ये जुनून है इतिहास को रटती इस तेज जबान का, ये विस्फोट है आत्मसम्मान का, आत्मविश्वास का।
स्पेशल महिला टूरिस्ट गाइड पर सूर्यांशी पांडे की रिपोर्ट आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कुलदीप मिश्र से।
बीबीसी समाचार। जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने दावा किया है कि घाटी में ईद शांति के माहौल में मनाई गई। पुलिस के मुताबिक कानून व्यवस्था के 1-2 मामलों को छोड़कर घाटी में स्थिति सामान्य रही। कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे आप्रवासियों के लिए वीजा अवधि बढ़ाने और स्थायी नागरिकता यानी ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और मुश्किल बनाने जा रहा है। हांगकांग हवाई अड्डे पर जमा सैकड़ों लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी अब वापस लौट गए हैं। उड्डयन प्रशासन का कहना है कि वे आने वाले कुछ घंटों में उड़ानें फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जेंटीना में एक मध्यमार्गी वामपंथी नेता के राष्ट्रपति चुनावों के शुरुआती चरण में जीतने के बाद वहां शेयर बाजार में काफी गिरावट आई है। ब्राजील में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे एडवर्डो की अमरीका के राजदूत के तौर पर नियुक्ति पर विवाद हो गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।